पा ही नहीं सकेगा, वो तुम्हारे पैसे वापस कर ही नहीं सकेगा, इसलिए संग्रह भी करवाना चाहिए, जेल में बंद नहीं हो सकता वो, उसे खुला छोड़ा जाएगा। हाँ, एक शख्स ऐसा है जिसके पास पैसे तो है, अपने मजीद पैसे बनाने के लालच में वो देना नहीं चाहता, वो अपने हुकूमत को दावत करेगी, जबरदस्ती पर उसे लेकर देगी, उसके माल को कुर करेगी, भारतीय सरकार व्यक्ता के उसकी नीलामी करेगी और नीलामी करके उस शख्स के पैसे अदा करेगी जिसके पैसे वो देने थे। लेकिन अगर वो वाकई हिसरत वाला है, तंगी वाला है, तो हुकूमत का भी इस्तेकाक नहीं है कि किसी के कोई माल को कब्जा कर सके। हाँ, जो चीजें कुर्क भी करनी है उसके अंदर भी कुछ पाबंदियां अल्लाह के रसूल ने लगा दी, तुमने माल किसी का लेकर देना है, इस्तेकाक है उसका, वो देना पड़ेगा, तो उसका जाती मकान जिसके अंदर वो रहता है वो उसका कुर्क नहीं किया जा सकता, उसके जरूरत के घर की चीजें जिसका वो रोजाना इस्तेमाल करता है वो कुर्क नहीं की जा सकती, उसके वो औजार और उसकी वो दुकान जिसके नजरिए वो माल कमाता है वो हुकूमत अपनी ताकत के साथ भी कुर्क नहीं कर सकती। मतलब यही है कि इक्तसाद का पहिया चलता रहे, जब इक्तसाद का पहिया रुकता है तो पूरी कौम की बदहाली का बायस बनता है, इक्तसाद का पहिया चलता रहना चाहिए। अब फिर एक मामला आ जाता है कि फर्ज को उसको मोहलत तो दी, तो कई साल गुजर गए वो देते ही नहीं है, क्या किया जाए, तो इंतजार ही में सारे वक्त लगा दिया जाए, नहीं। अब हुकूमत का ये फर्ज है कि हुकूमत उस आदमी की खुद मदद करे, अब हुकूमत मदद नहीं करती तो उसे मजबूर करे कि अपने अजीजों का रब और बस्ती के लोगों को अपील करे, और उसके पास हुकूमत का एक लेटर होना चाहिए कि इसके ऊपर इतना कर्ज है, इसकी अदायगी के लिए आप इसकी मदद करें, यह हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, और वो हुकूमत का लेटर जो है वो अहले मस्जिद को दिया जाए और वो उसको पढ़कर सुनाए, लोग अपने भाई की मदद करें, लोग जो कि सूद के बुनियाद पर कारोबार करने वाले होते हैं उनके लिए भी एक ताजियाना होता है कि अगर हमने इसको अदा न किया और सूद को न छोड़ा एक दिन रहेगा हम भी इस तरह मदद के लिए मजबूर हो चुके होंगे। तो भाइयों का काम है उसकी मदद करें, अब ये रजा कराना है ये सत्ता, अब दूसरों से सत्ता लेके जो तुमने वो कर लेना है सारे माल को कहा जा रहा है, दूसरे को लेकर जो दूसरे जो है आपके जिसने कर्ज लिया उसको देंगे वो अब फिर आपको वापस करेगा, इतना लंबा पैसा जो चलाना है, अगर अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दे रखे तुम खुद सदका कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये लोग जो तुम्हें पैसे वापस करेंगे तुम्हें वो कितने करेंगे, फर्ज करो तेरा असल घर जो बाकी लेना था वो कर्ज जो तुमने लेना था वो था 1,00,000 रुपया, लोग जमा करके जो दे देंगे वो पूरा भी दे दो 1,00,000 ही देंगे, ऐसे लाभ से जाए देंगे तो मतलब शुद्ध हो जाएगा वो तभी तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 1,00,000 मिलेगा, लेकिन अगर ये 1,00,000 तुम सदका कर दो तो अल्लाह कहते हैं कि मैं 1 के बदले 10 दूंगा, इसी दुनिया में दे दूंगा, तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं है। मेरी दुनिया में भी जरूरत नहीं, मेरी आदत बड़े कमजोर है, मेरी आदत बना दे, वहां जो अल्लाह क्या करेगा वो बेहतर है या दुनिया के अंदर जो चीजें वो बेहतर है। सारे काम आपके नियमित एक तरफ कटी कर दी जाए और जन्नत की एक नियमित तो आपका मुकाबला कर सकते हैं, तो अल्लाह तो बेहिसाब ही देगा, बेहिसाब देगा। अगर तुम्हें पता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है, मेरा पूछ लो रसूलुल्लाह से कितना बढ़ाकर मिलेगा, अगर तुम्हें इस बात पर यकीन आ गया है तो बेहतर यह है कि अगर तुम माफ कर सकते हो तो माफ कर दो, तुम्हें कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन क्या करें, हमें तो اللہ کی بات کا یقین نہیں آتا. ہم کہتے ہیں یہ لاش ہی ٹھیک ہے, یہ لاش ہی لینا ہے. اگر اس بات کا یقین آ جائے کہ وہ ایک کے بدلے میں دس کبھی مل گئے ہیں, اس کے وعدہ کرنے والے اس سے کہیں گے میرا یا نہیں دے گا. لیکن مجھ سمیت میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس کو یقین کرتا ہے. کوئی بھی ہوگا جس کا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھا ہے ایک ہی شخص کو. ڈاکٹر سعادت صاحب وہ منصورہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو, پرانی بات پیسے ہو, تو چاہے کہ کوئی چیز نہیں میرے گھر کی ضرورت ہے, کسی سے لے کر جتنے کی وہ چیز ہوتی ہے اس کا 10% کسی سے قرض لے لیتے ہیں. وہ 10% کسی سے قرض لے کر اللہ کے نام صدقہ کر دیتے ہیں. قرضہ کیا کر رہے ہیں وہاں سے, میرے تیرے نام میں 10% صدقہ دیا ہے نا, تو جب وہ بڑھا کے دینا تو نہیں مجھے تو دے میری چیز آ رہی. آپ پر مجھے یہ یقین ہے ان کم کم کا عالم ہوں, لیکن مجھے اگر یہ پتا ہے کہ بس دس گنا نہیں اس میں تو میرا اس سے بھی خراب دیکھ رہا ہے. جس طرح محمد رسول اللہ کی میں نے آپ کو بات سنائی کہ وہ آدمی جو 2.5 کلو کھجورے لے کر آیا تھا, ہم کا بابا کرم میرا فروخت کے سارے ماں کے اوپر بکھیرتے ہوئے کہا کہ آج محمد کی بازی یہ جیت گیا ہے. تو میرا اللہ تو رسول اللہ سے بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں. مجھے کہتے ہیں تم اپنے خراب بڑھا لو, تمہیں اتنا نہیں ہے جتنی میری شان ہے. کن کن پالا ہوں, اگر تمہیں پتا ہے تو یہ سب کا کر کے دیکھو. اور اگر بڑا مشکل کام یہ ہو, اس لیے کہ وقت کو امن وقت کو ڈرو نومن اس یوم سے ایک خاص یوم ہے, یہ لکھا یومن ہے اس لیے کہ اس خاص کی تحدید میں کہ گئے کہ وہ کب آنا ہے. یومن اسی یوم پھر جاؤں, یہ تو تم کے لیے آ گیا بہت جنت کی نعمت بچے رجا رجوع کرنا اردو کا کلمہ ہے. تم رجوع کرو گے تو واپس بیٹھو گے پھر ہی اس میں, تو اس دن سے ڈرو جب تم واپس پڑھتے گے ان اللہ اللہ کی طرف. مرکز پر کس کی طرف جانا ہے تو وہ پوچھے گا کہ تو چھوڑ سکتا تھا, تجھے تو ہم نے کروڑوں دیے ہوئے تھے, بات تو ہزاروں اور لاکھوں کی تھی, حوصلہ بھی بڑا تجھے صدقہ کرنے کا. اور واپس تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے تو گھاٹے کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے, میرے تو آگے بہت تمہیں دے رہنا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے, اگر اس بات کا پتہ نہیں یقین ہو جائے, تو پھر آدمی اللہ کی راہ میں وہ مال لگا دیتا. ایک اور بات سکھائی یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صاحب کے اوپر درس زیادہ تھا, مانگنے والوں نے جب مانگا کہ اس ہمارے پیسے واپس کرو, وہ دینے کا اہل نہیں تھا, تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرادی کرا دی کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرو. وہ بھائی کی جب مدد کی گئی تو پیسے پھر بھی کم ہو گئے, اور حکومت بھی اس قابل نہیں تھی زمانے میں کہ حکومت اس کی جگہ پر پیسے دے لیتی. حکومت خود بڑی کمزور تھی اس زمانے میں. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے جو میں تمہیں لے کر دے سکتا تھا وہ تو لے کر دے دیا ہے, اس سے زیادہ میں لے کر دے نہیں سکتا, اسے صدقہ کر دو. یہ رسول اللہ کی فرمائش بھی ہے آپ سے, تمہارے لیے یہی بہتر ہے, اب اسے صدقہ کر دو, تم اسے معاف کر دو. جب معاف کرو گے تو پتہ نہیں تمہارے کون کون سے گناہ ہیں جو لوگ خود تمہارے معاف کر دے گا. اللہ کا حافظ, اللہ کا حافظ, میرے آپ کے گھر میں نہیں ہے. कोई बात समझा सका जी। लोग नहीं थे जब एक एक पाई का हिसाब हो जाना है और हम लोग जात से दूर जिलों के घरों को जानने वाला और अकल के फतूर को पहचानने वाला उस दिन बता देगा कि बाहर तो तुम बड़े नेक बने फिरते थे, असल में माल की मोहब्बत ज्यादा थी या हमारी मोहब्बत ज्यादा थी। याद है कि एक साहब हमारे साथ पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्हें कॉलेज के जमाने की मैं बात सुना रहा हूं। जिस वक्त कॉलेज में हमारे साथ थे, मैं घर से चार आने जब लेकर जाता था, सात पैसे किराया होता था जाने का, सात पैसे आने का किराया। उस वक्त मैं वॉकशॉप गाड़ी में आता था, 600 गाड़ी में, तो मैंने गाड़ी जो उसके पास कितने पैसे होंगे। तीन चार साल पहले की बात है कि रमजान में, और तीन साल पहले की बात है, रमजान ने मेरे से बड़ा परेशान रखा और ईद के मौके पर जब मैं गया तो उनकी लाइट भी और गैस भी कटी हुई थी और ईद में 3 दिन बाकी थी। मैंने पूछा मामला क्या हो गया, कारोबार करता था, कारोबार में एक दो तो घाटे पड़ गए, सूद और बढ़ गया, अब इतना सूद बढ़ गया है कि मैं 1,40,000 रुपये महीना सूद देता हूं, उससे बचेगा तो मैं दोनों बजे में गिरफ्तार हो जाऊंगा। अंत में पैसे वापस कर देंगे। पैसे वापस हुए मुद्दे पर गए, जितने पैसे लिए थे उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्जे जो वसूल था वो बढ़ चुका है। जितना कर्जा लिया था उतना उससे ज्यादा सूद हो चुका है। अब रोते गिरते हैं कि इस्लाम में सूद हराम है तो मेरा माफ करवा दीजिए, पैसे जरा माफ करवा दे। खतरनाक बात कहने लगा, कोई शख्स अल्लाह के दीन के निफाज के लिए कोशिशें नहीं करता, वो अपने मजे लेने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने फायदे लेने के लिए अल्लाह उसके सूद के साथ जंग करके वो फायदा तो ले लेता है, लेकिन अल्लाह के दीन के निफाज के लिए कभी कोशिशें नहीं करता। उसका सूद माफ कराना भी जायज नहीं। मुसलमान वाला शुरू से ही मुसलमान अपने शर्तों पर कायम रहते, तुमने जिससे पैसे लिए हैं उसके साथ ये वादा किया है कि मैं तुझे इतने वापस करूंगा उसके पैसे वापस करो, उसकी सिफारिश भी जायज ना होगी। हाँ, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करता है, ये अल्लाह दीन को गालिब कब पड़ता है ये तो अल्लाह की मर्जी, दूर कोशिशें करनी चाहिए। जिसे गलती होगी वो तौबा कर रहा है, वो तौबा करने वाले के लिए तो करना चाहिए, लेकिन जिसका जाहिर हाल बताता हो तो उसको दीन की तो कोई परवाह नहीं है, दिन गालिब होता या नहीं होता उसकी तो आपको कोई परवाह नहीं है, तो फिर आप उसकी क्यों ज्यादा परवाह है? आपको मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तमाम के रसूल के साथ दंग करने वालों के साथ, वहां पर एहतियात करनी होगी। کہ یہ ضرورت سے زائد جو پیسے دیے ہیں تیری ضروریات سے زائد جتنے پیسے وہ تمہارے ہیں ہی
تمہارے درمیان کوئی کاتب
ہماری زبان سے کر لیں یا آبا ابا یا آبا کہتے ہیں انکار کر لیں. وہ انکار کرے کاتب کوئی کاتب انکار نہ کرے لکھنے کا
نہیں. یہ سب وہ اس کا
कानून के ऊपर जबर लगी हो तो वो जमा की अलामत है, और अगर कानून के ऊपर जबर न हो बल्कि जेर आ जाए तो ये जमा की अलामत नहीं, मुसलिया या तस्लिया यानी अदब में दो की अलामत होता है। तो शाहिदाने दो गवाह, मैंने बाप वाले कर देता जी शाहिदान दो गवाह, जाने को रिजाल की जमा रिजाल कहते हैं आदमियों को, अपने आदमियों में से रिजाल तुम अपने आदमियों में से तुम दो गवाह बना लो, हम नकूल तुम अगर यम यम नदी के लिए भी आता है, मुजारे से पहले आता है, मानी के मानो देता है नकूल निर्णय लेने में कोई कोताही न करना। वालिकुम वालिकुम इसलिए ये जो चीज है जारी करते हैं बैठ के मन में, ये जो मामला हमने समझाया है यह अक्सर सबसे ज्यादा इंसाफ वाला किस करते हैं इंसाफ करने को करते हैं। सबसे ज्यादा इंसाफ वाली बात यह है इन बल्ला अल्लाह के नजदीक इन खास करीब नजदीक के लिए होता है अल्लाह के नजदीक से ज्यादा ये बात इंसाफ पर मबनी है कि तू छोटा हो या बड़ा हो उसके ऊपर गवाहियों को लिखवा लो और इसमें काहली न करना। वो अपने शहादत और शहादत को कायम करने के लिए बहुत जरूरी है वो अदना और करीब है अल्लाह पर काबू। अदना दुनिया से करीब के मन में दुनिया करीब की चीज को कहते हैं आखिर दूर की चीज को कहते हैं काबू तो काब करना भी बहुत के दिनों की आमद है। उर्दू में कहते हैं मैं ये बात बिना शक को इर्तिहाब कहता हूं। इर्तिहाब का मतलब भी शक में उतरा हो जाना। ये और अल्लाह जो है ना कलमा ये दरअसल है अन जमा लाभ सुनने का बना है अन के लाभ नहीं तो ना तो काबू के तुम शक में ना पड़ जाओ। जब आप लिखवा लेंगे तो फिर कोई शक वाली बात ही नहीं होगी। इसमें ध्यान रखिए अन टकूना तुम एक टकूना के हो तुजारतन तुजारत हाजरतन हाजरत सवाल इसके इला टकूना सवाल इसके कि वो तुजारत हो हाजरतन हाजर करते जो एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से देते। मिसाल के तौर पर ये जो हम दुकान से सौदा लेने जाते हैं पांच किलो चीनी दे देना पैसे दिए चीनी वाली उसके ऊपर लिखवाने की जरूरत नहीं है। हथियार जिसे आपने करना चाहिए हाजरा तुम हथियार ठीक करने का समझा तो दीवाना दायरा ये दे रहे दायरा कहते हैं एक दूसरे के दरमियान में रहने वाली चीज को दायरा दरमियान में रहने दोनों तुम तुम्हारे दरमियान ये जो तुम्हारे दरमियान हथियार की आदत होती है इसके ऊपर खाने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमें तुम गुना हो बस हमेशा नहीं है अलैकुम तुम पर गुनाह हूं कोई भी गुना अगर तुम इस तरह सौदा दे दो तो कोई गुनाह की बात नहीं। अल्लाह तक्तबू है अल्लाह तुम ना तक्तबू है कि तुम उसे न लिखो इस पर न लिखे तो कोई गुना नहीं। रशीदो और दवा बनाओ इला तबा आया तुम जब तुम कोई खरीदोफोक करो बकायदा अगर कोई डेट हो रही है तो चीजें आपने बनवाने और दूसरों से तजारत के तौर पर लेनी है उस तजारत के ऊपर बना जो दवा हो उसके ऊपर तुम दवा बना लेना उसके ऊपर जब तुम बकाया तजारत करो तो उसके ऊपर लिखना भी है और ऊपर दवा भी बना रहे हैं गुना बना लेना बनाएदार और कोई नुकसान भी ना हो कातिबन किसी कातिब को लगा शहीद न किसी गवाह को न गवाह को तंग करना और न ही लिखने वाले कातिब को। तुम तफरू मैं और तुम अगर तफरू अगर तुम ये काम कर लो फिर यह अर्जू का करीब जमा की रामत है वही नहीं अगर तुमने ये काम किया तो तुमने जवाब ही न बनाए लिखवाया बना तुमने दसू को देखूं जो तुम्हारी तरफ से फिस्क होगा लकी नाफरमानी होगी अल्लाह से अल्लाह अल्लाह से मैं नहीं रुकूं वो तुम्हें सिखाता है इन देता है अल्लाह अल्लाह तुम्हें इन सिखाता है अल्लाह बिल्कुल निशे इन अलीम अल्लाह को हर चीज का इन रखते लोगों जो ईमान लाए हो जब किसी मुकर्रा मुद्दत के लिए तुम आपस में کرنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. یہ لکھے اور اللہ وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا, اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا اللہ نہ کرا سکتا ہو تو اس کا بڑی انصاف کے ساتھ اللہ کرائے, تو اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو اس پر گواہ بھی کرا لو. اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرے اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. مردوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا معاملات کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے, اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں یہ تجارتی لین دین دست بدست تم سے لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت دعا کر لیا کرو, تعصب اور دعا کو سایہ نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے ہر چیز کا نہیں. یہ تو بات طے ہو گئی اب تم نے ضرورت مند کو سود پہ پیسے نہیں دینے, اب دینے ہیں تو قرض دینا. یہ دینے والا فرد بھی ہو سکتا ہے اور دینے والی حکومت بھی ہو سکتی ہے. یہ جو قرض دینا ہے اس کو جتنا قرض دینا ہے اور جب تک دینا ہے یہ جو تاریخ اور وقت ہے وہ بھی آپس میں لکھ لیا گیا. Thank you.